वो हमारे मुखबिर से पता चला कि मिस्टर अरमान सिंघानिया की आज जापान के फॉरेन क्लाइंट्स के साथ और साथ साथ फ्रांस के क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग होने वाली है। ये खबर मुझे उनके ऑफिस में काम करने वाले मेरे एक भरोसेमंद आदमी ने दी थी। जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो बोला, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी अवैध बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए और मैं इन दोनों को ही एक बार अपने हाथों से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। तब वीर ने रंजीत की ओर देखते हुए कहा, ये बताओ मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है, अब आगे। तब रंजीत ने कहना शुरू किया, एक्चुअली सर मीटिंग आज दिन में ही थी और वो भी उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू होनी थी, लेकिन मेरे हाथ में इन्फॉर्मेशन मिली है कि अरमान सिंघानिया अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने के लिए मॉल में ले गया है। जैसे ही वीर ने ये सुना वो हैरान हो गया और बोला, मॉल में पत्नी, अरमान सिंघानिया की शादी हो गई? तब वीर रायचंद मन मन में सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया की शादी कैसे हो सकती है, उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने उसकी होने वाली पत्नी के बॉयफ्रेंड को अगवा करवा लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है और इस मामले में मैं इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? क्या मुझे उसकी शादी वाले दिन स्विट्जरलैंड जाना था? काश मैंने खुद को रोक लिया होता तो आज अरमान सिंघानिया मुझसे नीचे होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड को मैंने अगवा करवा लिया था तो वो लड़की अरमान से शादी कैसे कर सकती है, और किसी भी न्यूज़ में इस बात की खबर नहीं आई है। इट्स स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? रंजीत ने इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। अरमान सिंघानिया ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है, और सर एक और बात पता चली है। तब वीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या बात पता चली है? सर ये पता चला है कि अरमान ने एक मामूली सी लड़की से शादी की है, और जिस लड़की से एग्जैक्टली अरमान की शादी होने वाली थी वो शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई थी। उसके बाद सिंघानिया परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और लड़की से अरमान सिंघानिया की शादी करवा दी है। जैसे ही वीर ने ये सुना वो जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऐसी ही बात है तो इस खबर का हम अब अपने लिए यूज़ करेंगे, और मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार अरमान को जापान और फ्रांस के प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं। ये खबर बम ब्लास्ट जैसी है जिसे हम कल सुबह अरमान के ऊपर फोड़ेंगे। अब वीर रायचंद मन में सोचने लगा, भले ही तुमने अपनी शादी बचा ली और अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन ये खबर तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि अरमान सिंघानिया की दुल्हन शादी वाले दिन ही फरार हो गई थी। ये सब कुछ सोचते हुए वीर रायचंद मुस्कुराने लगा और फिर रंजीत से बोला, मुझे अरमान सिंघानिया को आज नीचा दिखाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इस डेविल किंग का क्या करूं जो कि छुपकर हम पर वार करता है। बहुत जल्द डेविल किंग को मैं अपनी आंखों के सामने अपने घुटनों पर देखना चाहता हूँ। जैसे ही वीर ने ये कहा रंजीत मन ही मन में बहुत सी बातें सोचने लगा, लेकिन अपनी गर्दन नीचे झुका रखा ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ देख ना ले। रंजीत फिर सोचने लगा, वीर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग तो एक तरह का तूफान है जो केवल कुछ ही पलों के लिए नजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। वेल, डेविल किंग के बारे में सोचते हुए अपने आप ही रंजीत के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि डेविल किंग कितनी ज्यादा खतरनाक मौत दिया करता था ये बात रंजीत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि डेविल किंग ने वीर रायचंद के कितने सारे आदमियों को बड़े ही बेरहमी और दर्दनाक मौत दी थी। इतना ही नहीं, लास्ट टाइम लड़कियों को छुड़वाया था तो जितने भी उनके आदमी थे उनकी बेरहमी से पिटाई करने के बाद डेविल किंग ने उन सबको जिंदा जला डाला था और खौफनाक मौत देकर मार डाला था। ये बात उस चश्मदीद ने खुद बताई थी जो कि वहां से बचकर निकला था, और उसके बाद वीर रायचंद ने उसकी जान ले ली थी, तो तब से रंजीत के मन में डेविल किंग के नाम का खौफ बड़ी ही बुरी तरह से बैठ चुका था। इनफैक्ट रंजीत की भी एक बुरी आदत थी, उसे भी लड़कियों के साथ अय्याशी करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन जब से उसने ये देखा कि डेविल किंग लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों को कितनी खौफनाक सजा देता है, तब से उसने लड़कियों से दूरी बना ली थी। वेल, अब क्योंकि वो काफी ज्यादा डेविल किंग के नाम से डर गया था तो इसीलिए जल्दी वहां से बाहर निकल चुका था। ज्यादा देर तक वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर आस्था को ठीक 30 मिनट के बाद होश आया था, और जैसे ही उसे होश आया उसका ध्यान अपने आसपास की जगह पर गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं किसी और दुनिया में है, क्योंकि आस्था के दिमाग में इस तरह की बेबुनियाद बातें कहीं ना कहीं बहुत जल्द उसके दिमाग में आ जाती थी और वो किसी और ही दुनिया के बारे में सोचने लगती थी। उसने सोचा कि जरूर वो मर चुकी है और स्वर्ग में आ गई है, क्योंकि कहीं से भी उसे ये स्पेशल हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वो अस्पताल के बेस्ट VIP रूम में थी जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसीलिए वो अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में हमारा इलाज करा रहे हैं, क्योंकि आस्था के मुंह पर भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही साथ हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। क्योंकि वो कमरा इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था तो उसे तो यही लगा कि जरूर कृष्ण भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया है और उसका वहां पर वो इलाज करा रहे हैं। आस्था चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी थी, कृष्ण भगवान जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया, अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, अपना सपना कैसे पूरा करेंगे और हमारी नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे। ये सब सोचते हुए आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि दरवाजा खुला और तभी अरमान सिंघानिया वहां आया। अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गईं। वो सोचने लगी, ये यहाँ क्या? भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन में ये सब सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टी सीधी मुंह बनाने लगी। तभी अरमान वहां आया था और उसके पास खड़े होकर बोला, क्या तुम ठीक हो? तब आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम स्वर्ग में तो आप हमारा पीछा छोड़ देते। वो दुनिया में कम पड़ गई थी जहाँ हमें परेशान किया करते थे, अब आप यहाँ पर स्वर्ग में भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। जैसे ही आस्था ने अपनी मासूमियत में सारी बातें कही, अरमान हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब इस बेवकूफ लड़की को क्या हुआ है, अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है। लेकिन इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, तभी उसके ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आहान और सुमित वहां आ गए थे। वो आस्था की ओर देखकर बोले, आस्था भाभी कैसी हैं? गॉड, आपको होश आ जा, अब आप ठीक तो है ना? तब आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी और सोचने लगी कि ये सब भी मर गए हैं क्या और सब एक साथ स्वर्ग में आ गए हैं। आस्था को इस तरह से कोई जवाब न देता हुआ देखकर वो चारों हैरान थे। तभी ध्रुव आस्था को बताने लगा, भाभी आप जानते हैं कि आप मॉल में बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, आई होप आप ठीक हो। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई, कन्फ्यूजन में बोली,
ये क्या कहा आपने ध्रुव जी? हम अस्पताल में हैं, क्या हम मरे नहीं हैं? क्या हम स्वर्ग में नहीं हैं? जैसे ही आस्था ने इस तरह की बातें करना शुरू की, ध्रुव, आहान, परसुमित हैरानी से आंखें फाड़कर आस्था को घूर रहे थे। वहीं अरमान मन ही मन में सोचने लगा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें ही अपने मन में सोचने लग जाती है, क्या इसमें अकल नहीं है क्या? आस्था को इस तरह से बातें करते सुनकर आहान और ध्रुव अब तक खुद पर कंट्रोल किए हुए थे, अब दोनों का कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं सुमित घूर कर उन्हें देखने लगा था और फिर सुमित आस्था की ओर बढ़ा और बोला, आस्था आप इस वक्त स्वर्ग में नहीं हैं, बल्कि आप हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि आपको इन दोनों ने बताया, आप बेहोश हो गई थीं, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं। अब प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि सुमित अभी आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था, इसीलिए वो उसका नाम ले रहा था। भाभी भी वो कभी कभी बुला दिया करता था, लेकिन अब उसे एक बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी। तब जल्दी से आस्था ने सुमित का हाथ पकड़ लिया और खुशी से पूछने लगी, सुमित भैया क्या हम वाकई जिंदा हैं? हमें तो लगा था कि हम अपना सपना पूरा करने से पहले ही मर गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भैया कि आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा हैं। जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस तरह की बातें कहीं, अरमान इरिटेट हो चुका था, लेकिन ध्रुव और आहान की हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अरमान ने उन दोनों को घूर कर देखा और जल्दी से अब दोनों ने हंसना बंद कर दिया था, लेकिन उन मुंह बंद करने के बाद भी उनकी हंसी छूट ही रही थी, जिसकी वजह से उनके पेट हिल रहे थे। तब आस्था बोली, अब हम ठीक हैं, अभी हमें ठीक लग रहा है। तब अचानक आस्था का ध्यान याद आया कि वो तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए गई थी, उसने कपड़े बदल भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में है। हालांकि उसने अपना दुपट्टा लपेट रखा था और अस्पताल की चादर भी उसके ऊपर डाली गई थी, जिसकी वजह से उसका कपड़ा काफी कम दिखाई दे रहा था। लेकिन आस्था जल्दी ही अब ये सोचकर कि उसके सामने सभी के सभी मर्द मौजूद हैं, अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया था। वहीं अरमान आस्था को देखकर अब समझ चुका था कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, कि जिस तरह से आस्था अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़े को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए अरमान ने जल्दी से ध्रुव और आहान की ओर देखते हुए बोला, तुम सब अब बाहर जाओ। और फिर वो सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। जैसे ही अचानक से अरमान ने आस्था को आफत कहा, सुमित तो हैरान हो गया था, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं आस्था के हैरानी के मारे आंखें फैल गई थी और वो चिढ़कर बोली, क्या कहा आपने? आफत? हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं और आप हमें आफत कह रहे हैं? तभी अरमान इरिटेट होते हुए बोला, तुमने अपनी हरकतें, अपनी बातें देखी क्या? बेवकूफ वाली बातें करती हो तुम, एक नंबर की आफत हो तुम। हाँ आफत, जब से मेरी जिंदगी में आई हो कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करती ही रहती हो। तब सुमित अरमान के इस तरह के अंदाज और उसकी बातें सुनकर हैरान था और साथ ही साथ वो अरमान और आस्था की फाइट को एंजॉय कर रहा था और वो सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया, जो कि अपना एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचता है, आज वो बच्चों की तरह आस्था के साथ झगड़ रहा था, उसे डांट रहा था, क्योंकि अरमान अपने इमोशंस दिखा रहा था। ये देखकर सुमित को काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसीलिए वो ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं चाहता था और जल्दी वो वहां से बाहर निकल चुका था। तब सुमित को इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता हुआ देखकर ध्रुव और आहान बोले, क्या बात है, आप ब्लश कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हो आप, ऐसा क्या हुआ है आखिरकार अंदर? सुमित इरिटेट होते हुए बोला, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ये देखो कि आकाश कहाँ चला गया है और आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। तब ध्रुव ने जल्दी से कहा, वो मैंने कपड़े ले लिए हैं,
क्योंकि आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती हैं, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की मदद से जो भी मुझे ठीक लगा वो सारे कपड़े मैंने ले लिए हैं, और साथ के साथ कुछ बैग्स, फुटवेयर, कुछ ज्वेलरी जो भी सेल्स गर्ल्स ने रेकमेंड किया मैंने वो सब खरीद लिया है। अब जो भी उसमें भाभी को पसंद आएगा भाभी रख लेंगी, जो नहीं आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगी। सिंपल। और वो कपड़े मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, उन्हीं में से कोई एक सूट लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव जल्दी ही गाड़ी की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, और उसे बार बार वो दृश्य याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठा दिया था। उसे बार बार रश्मि सोच रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था।